Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Avidya, jo hamare liye hanikarak hai, jo hame dukh mein le jane wala, lekin usme hamari prasannata hai, to wo bhi avidya hame देती, लेकिन विद्या क्या करेगी? विद्या उससे तुम्हें निवृत्त करेगी, विद्या वह देगी नहीं। ये दोनों में अंतर है, लेकिन संकेत कर दिया, ये तो विद्या विद्या का और जो है अंतर है। तो अविद्या तो इस प्रकार से करेगी, लेकिन जिसने विद्या विद्या को दोनों को जान लिया, क्या कर लिया? विद्या को भी जान लिया और अविद्या को भी। और जो जानने वाला होगा तो वो क्या करेगा? यदि वो पुत्र जानने वाला हो, छोड़ो, वह पुत्र ये जान ले कि ये विद्या है ये अविद्या है, और ये जब उसका ज्ञान हुआ तो कभी भी उसके अंदर ये नहीं आएगा कि मां हमारा अहित चाहेगी। और जब ये नहीं आएगा तो मां के द्वारा निषिद्ध किए हुए कार्य को अस्वीकार कर ले। ऐसे ही संसार के अंतर्गत भी यह जीव भी अविद्याकृत जितना भी कार्य है, प्रकृति कृत जितना भी कार्य है, उस सारे कार्य को वह स्वीकार करता है, लेकिन जब वह समझ लेता है तो वह प्रकृति के सारे कार्यों को स्वीकार, उतने ही कार्य को स्वीकार करता है जो उसके लिए उपयोगी। और फिर कैसे करता है तो उसकी भी विशिष्टता वैशिष्टता है। वो वैशिष्टता क्या है? तब वो देखता है कि इस अविद्या और विद्या का भी एक आश्रय है। वो आश्रय क्या है? जिसके आश्रय ये विद्या है और अविद्या है, और उस आश्रय को लेकर के ही हमारी भी सत्ता है। पुत्र की सत्ता कब होगी? भाई पिता की भी सत्ता तो चाहिए है? आप गीता में पढ़ते तो रहते हो, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जो प्रकृति जो है केवल कुछ करने में समर्थ नहीं, लेकिन कब करती है? करती सब प्रकृति, लेकिन कब करती है? तो उसे अध्यक्ष बनाकर। और अध्यक्ष का तो अर्थ ही है अधिकरण में रह करके जो दृष्टि वाला है उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। तो अब जो है यहां पर कोई पिता है, इसके आश्रय को लेकर मेरी भी सत्ता है, और ये दोनों भी उसके आश्रित हैं। और जब ये उसे ज्ञान आएगा तब वो देखेगा कि यहां पर जो है विद्या हमारे लिए क्या करने वाली है और अविद्या क्या करने वाली। और ऐसा जब उसे ज्ञान होता है तो वो समझ लेता है कि अविद्या जो है वो हमारे हित का कार्य करने में समर्थ नहीं, वो तो हमारे में संवर्धन नहीं कर पाएगी, हमारे में विभागी करती जाएगी, हमारे में खंड करती जाएगी, हमारे खंड में नवीनता कभी ला सकेगी नहीं। ये नवीनता कब आएगी? तो कहने लगे ये नवीनता तो आएगी विद्या के द्वारा। नूतनता कब आएगी? स्वस्थता कब आएगी? अपने में स्थिति कब होगी? तो कहने लगे ये होगी विद्या के द्वारा। तो विद्या को अब जब जो है इस प्रकार से वो ग्रहण करेगा तब क्या करेगा? तब साथ में ये भी देखेगा कि ये विद्या भी आश्रित किसकी है, उस सत्ता को भी वह ध्यान में रखेगा। और जब उस सत्ता को ध्यान में रखेगा तब उसके अंतर्गत विचार क्या आएगा कि इस विद्या की भी सत्ता या इसकी भी क्रिया किसके ऊपर निर्भर है? तो कहा इस पिता के ऊपर। ऐसे ही संसार के अंतर्गत जितने भी आप पद पदार्थ स्वीकार करते हो, जितने भी खंड विभाग स्वीकार करते हो, वो सारे कैसे हैं? तो आप क्या कहते हो? सारी सृष्टि पंच भौतिक है। सारी सृष्टि कैसी है? पंच भौतिक है। तो पंच भौतिक का मतलब पांच भूतों से
निर्मित है।
पांच भूतों से यदि सृष्टि निर्मित है तो अब जो पांच भूतों की सृष्टि है और पांच भूतों में आप हो कि नहीं, विचार करना होगा। उन पांच भूतों के अंतर्गत मैं है कि नहीं, तो क्या कहोगे? पांच भूतों में ही मैं है, अभी मैं करके ही जानता हूं, क्योंकि अहंकार कहां से हुआ? आप प्रक्रिया जो पढ़ते हो तो अहंकार की सत्ता भी कहां से आई? आप प्रकृति अव्यक्त आदि क्रम से लेते हो, महत्व तत्व अहंतत्व इत्यादि करके और पंचभूत आदि स्थूल रूप से, पहले सूक्ष्म रूप से लेते, तो ये सब अहम भी क्या है? ये जो मेरा मैं है जिसे जागृत में आप पकड़े हो, विभाग करके खंड किए करके हो, तो वो क्या है? तो वो भी किसका कार्य? प्रकृति का कार्य। अब जब वो प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति के कार्य में वह मैं भी प्रकृति से बना, और मैं जिसको दृश्य बना रहा है वो किससे बना? मैं जिसे दृश्य बना रहा है, मैं दृष्टा बन रहा है जिस समय, उस समय दृष्टा बन रहा है, तो जिसे दृश्य बना रहा है वो दृश्य किससे बना? वो भी पंचभूतात्मक। हम इस पुष्प को देख रहे हैं तो पुष्प क्या है? पंचभूतात्मक। और हम भी क्या है? पंचभूतात्मक। तो ये कार्य किसका किसमें हो रहा? पंचभूतों का पंचभूतों में ही ये तो हो रहा। ये जब स्थिति देखते हैं तो ये सब की सब स्थिति है, लेकिन ये कब हो रहा है तो इसमें मूल क्या कहा? का अध्यक्ष कौन है? किसकी सद? प्रकृति स्वतः तो कर नहीं सकती। तब प्रकृति किसके माध्यम से करती है? ये आश्रय किसका लिए हुए है? तो क्या कहोगे? कहा वही है परमात्मा। वो क्या है? परमात्मा। अब जो परमात्मा है या आत्मा है या ब्रह्म है या कोई भी सत्ता दे लो, ये भी नाम हम लोगों के दिए हुए, वास्तव में वो क्या है? कोई न कोई शक्ति, या उसी को कह दिया तुर्य। उसको क्या कह दिया? तुरीय है, माने वो पूर्ण है, बस ये कह दिया, माने पूर्ण है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन, परिवर्तन ये तीन अवस्थाओं तक है, उस अवस्था में जाकर के कोई परिवर्तन नहीं। ये विभाजन जो है, खंड जो है, इन तीन अवस्थाओं को लेकर के है, और इनमें विभेद भी है, लेकिन वहां पर जाकर के कोई भेद और कोई खंड नहीं। वो इसका आश्रय। अब जो इसका आश्रय है उसमें कोई विभाग संभव नहीं, कोई खंड संभव नहीं, लेकिन उसके आश्रय के बगैर ये भी खंड संभव नहीं, ये भी संकेत किया। और ये जब दृष्टि आ गई तो अब यह देखना होगा कि वो आश्रय है, तो आश्रय कभी भी आश्रित से पृथक नहीं होता। आश्रय कभी भी आश्रित से पृथक नहीं होता, ये नियम है। पृथ्वी क्या है? मूल रूप से हम लोग लें, जितने भी जीवधारी हैं इनका आश्रय क्या है? पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी को छोड़ के आप लोग रह सकते हो? जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं, ये मान लो, वो पृथ्वी को छोड़ करके कभी रहे ही नहीं। लेकिन वो पदार्थ न रहे तो पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी? पृथ्वी की सत्ता तो रहेगी। ऐसे ही जितने भी ये जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था है, ये संपूर्ण अवस्थाएं उसको छोड़ करके रहने में समर्थ के आश्रय में ये रहने वाली हैं, और उसी के आश्रय में रह करके क्या हो रही? क्रियान्वित हो रही। जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प में ये नवीनता, ये सौंदर्यता कब आई? तो क्या कहो? सीधे सीधे तो नहीं आ गई, उसके लिए भी प्रक्रिया। बीज का जो है पृथ्वी के अंतर्गत बपन किया गया, पौधा बना, फिर उस पौधे में क्रम से जो है पत्ते, टहनी और पुष्प आदि तब आए। तो ये कब आए? तो पानी भी इसे मिला, सूर्य का प्रकाश भी इसे मिला, जमीन से अंश भी मिला, और ये सब जो है तेज आदि सब इसको जब मिले तब जाकर के ये कहीं पुष्प रूप में निर्मित हुआ, और ये पुष्प होकर के भी और फिर जर जाएगा, फिर नहीं रहेगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो अब पुष्प जो है, तो इस पुष्प में जो भी ये पांच भूत हैं, उन पांचों भूतों की सत्ता, लेकिन वह सत्ता जो है वो कैसी है? परिवर्तनीय, खंड से होकर के इसमें आई। लेकिन वो भी सत्ता कब आई इसमें? उसका भी मूल आश्रय क्या है? तो उसका प्रकृति का मूल आश्रय क्या कहा? आत्मा। आत्मा के बगैर ये जो है सब संभव, उस चेतना के बगैर, उस पूर्ण के बगैर ये सब संभव नहीं। तो संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं या जितने भी खंड हैं, उन खंडों में वह जिसे हम चेतन शक्ति कह देते, कहीं रूह कह देते, यदि उसका आश्रय न रहे तो क्या किसी पदार्थ की सत्ता हमें प्रतीत होगी? सत्ता प्रतीत नहीं। और सुसुप्ति में तो आप जान लेते हो कि इस अहम का भी अभाव हो जाता है। इसलिए अहम कैसा हो गया? अहम एक वस्त्र की तरह हो गया, ऐसा मान लो। हमने जागृत में वस्त्र धारण कर लिया और शाम को हमने वस्त्र को उतार दिया है? यही पंचदशी में जो है राज इत्यादि की भी चर्चा करते हैं, मुकुट आदि धारण करता फिर उतार दे। ऐसे ही अहम को हमने एक अवस्था विशेष में धारण किया और फिर उसको उतार भी दिया। लेकिन जिस समय उतारा उस समय कोई है कि नहीं? उस समय जो है उसी की दृष्टि है व्यापक। उसकी दृष्टि कैसी है? इसी को आप कहते हो है? कि दृष्टा जो है उसकी दृष्टि का परलोप नहीं होता। अन्य की दृष्टि का परलोप हो जाएगा, लेकिन दृष्टा की दृष्टि का परलोप कभी नहीं होता। तो अब वो परलोप नहीं होता है तब कैसे समझा जाए? तो उसी के लिए गीता में आप पढ़ते भी हो है? पश्चन श्रवण, हाँ, ये सब कुछ करते हुए भी और कुछ भी नहीं करता। ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन कब? जिस समय इस आश्रय को अजान लेता, किसी को अन्यत्र भी कहा, सैव धन्य या आत्मज्ञ सर्वभावेशु समः, जो सर्वत्र उस आश्रय को देख लेता है, उस आत्म तत्व को देख लेता है, कहने लगे वो ही है सम। उसे क्या कहेंगे? सम। उस मूल सत्ता को जो सर्वत्र देखने वाला है, तो कहने लगे जो सर्वत्र मूल सत्ता को देखने वाला है, तो वो मूल सत्ता क्या है? इसी का नाम आत्मा कह दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर व्यापकता, उसके अंदर कभी भी अभाव नहीं, वो अबाधित है। तो ऐसी सत्ता को देखने वाला जो है वही क्या है? कहा धन्य। कहा धन्य है, क्यों है धन्य? कहा जब उसने ऐसी सत्ता को देख लिया और उसका निश्चय कर लिया, निश्चय को ध्यान रखना, और उसका जब उसे निश्चय हो जाता है तब वो क्या करता है? सर्वभावेशु समः, संपूर्ण भावों में वो उसी मूल को देखता है। तब विद्या में भी उसी को देख रहा है, अविद्या में भी, विद्या भी उसी के आश्रित है और अविद्या भी उसी के आश्रित है। उसके बगैर न विद्या हो सकती है न अविद्या हो। तो विद्या और अविद्या, संकल्प और विकल्प, निश्चय और अनिश्चय, ये भी सब कहां है? उसी एक ही सत्ता, उसका आश्रय वही। और ऐसा जिसने जान लिया वह आत्मज्ञा, ऐसा उस आत्म तत्व को जानने वाला, ऐसा आश्रय को जानने वाला, संपूर्ण भावों में क्या हो जाता है? सम्मने, उसी आत्मा का निश्चय करने वाला हो जाता। और जो आत्मा का निश्चय करने वाला हो जाता है उसके लिए क्या होता? क्वेश्चन श्रवण स्पर्शन जिग्रन अस्नन निस्तर्स मानसः, यह अन्यत्र का श्लोक, यह गीता का नहीं, दूसरे गीता का। तब क्या होता है? तो होता यह है, कहने लगे जब इस प्रकार से उसका उसे निश्चय हो गया, तब पश्यन माने देखता हुआ और नहीं देख रहा, और न देखता हुआ देख रहा, ये दोनों ही बातें दोनों तरफ से नहीं, देखता हुआ नहीं देख रहा और न देखता हुआ भी वह देखता, क्योंकि वह आश्रय रूप उसकी दृष्टि। लेकिन कैसे देखता है? और सबका व्यवहार वाली बातों कह दिया तो संकेत आ कर दिया निस्तर्स मानसः, क्योंकि अब उसके अंतःकरण में कोई भी एषणा, कोई भी ईहा नहीं रही। और एषणा का ईहा का समापन कब होता है? जब तक खंड रहेगा तब तक ईहा रहेगी, जब तक द्वैत रहेगा तब तक ईहा रहेगी। द्वैत को लेकर के ही सत्यता और आवश्यकता, असक्तता आवश्यकता ये सब रहते हैं। और जहां द्वैत ही नहीं है तो वहां सत्यता तो है लेकिन आवश्यकता नहीं, क्यों? वहां न्यूनता ही नहीं। तो इस प्रकार से जहां न्यूनता की प्रतीति होती है, आवश्यकता की प्रतीति होती है, वहीं पर जो है ईहा आदि होती। लेकिन जब ऐसे आश्रय को, अखंड को जब उसने निश्चय कर लिया कि उसी आश्रय में ये सब कुछ है, तब जो है वो क्या देख रहा है? कहा अब उसके अंदर जो है जब वही सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ नहीं है, अन्य तो परिधान किए हुए हैं, तो ऐसे अखंड में रहने वाला जो है फिर उसके अंदर कोई ईहा होती नहीं। और ये भाव जब आ जाएगा तब जो है जहां पर भी वह देखेगा तो मूल सत्ता का निश्चय जिसके जीवन में हो गया, तो चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, और चाहे वो हाथी हो चाहे गऊ हो, उसमें मूल देखेगा और सब क्या देखेगा? ये जो पुष्प है ये पुष्प कैसे हुआ? कहा उसी के माध्यम से हुआ, उसी की सत्ता को लेकर के हुआ। और ये पुष्प जो है पुष्प आकार तो है लेकिन नहीं भी रहेगा, ये भी निश्चय, लेकिन इसमें मूल सत्ता किसकी? ये निश्चय यदि उसको बना रहेगा तो उन पदार्थों में उस सत्ता को देखेगा, उनके रूप आदि को देख करके प्रसन्न भी होगा कि कितनी सुंदर उसकी कला है, तब उसके अंदर उसकी कला का। तो ऐसा निश्चय होना यह विद्यात्मक स्थिति, और इस विद्यात्मक स्थिति में वो जो है एक निश्चय पर होगा, निश्चय के समय उसे जो है इसी को जीवन मुक्ति कह देती। लेकिन जहां पर वह अधिष्ठान में अवस्थित हो गया, विद्या विद्या दोनों से रहित हो गया, उस समय क्या होता है? तो वो कैवल्य की स्थिति हो जाती, उसे क्या कह देते हैं? कैवल्य। तो इस प्रकार से अब जीवन के अंतर्गत यदि हम इसका ऐसा विवेक कर लेते हैं और विवेक करते हुए संसार के व्यवहार करते हैं तो हमारा है खंड, हमारा ये व्यवहार, ये तो खंड को लेकर के ही होगा, तो हमारा ये वर्ष भी कैसा होगा? खंड होते हुए भी यदि हमने ऐसा निश्चय कर लिया, ऐसा ज्ञान कर लिया, ऐसा ज्ञान करके हम वो जो है व्यवहारित होते हैं तो वो हमारे लिए दुखद नहीं, हमारे को सुख देने वाला होगा, हमारे अंदर नवीनता लाने वाला होगा। तो ये जब हमारे अंदर विचार आ जाता है तब तो बात बनती है, और ये विचार जब तक नहीं आता तो बात बनती। इसलिए भगवान शंकर के विषय में चर्चा आती, क्या थी? भगवान शंकर जो है जिस समय समाधि में बैठे हुए, आपकी सुसुप्ति उनकी समाधि ले लो, और समाधि में बैठे हुए तो क्या हुआ? देवताओं को जरूरत पड़ गई, इसलिए देवताओं ने जो है उनकी समाधि तोड़ने के लिए है प्रयास किया, साधना आदि इत्यादि करके सबको आगे करके। अब जब प्रयास किया तो वहां भगवान की समाधि जब टूटी, जैसे भी वो पूरी कथा नहीं, और जब टूटी तो क्या स्थिति थी? तो वहां एक बड़ा सुंदर कवि ने लिखा, एकम योग समाधिना मुकलितम नेत्रम द्वितीयम पुनः, संकेत किया, एकम योग समाधिना मुकलितम, मुकलित होना मैंने अभी पुष्प पूरा खुला नहीं, अध खुला, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हो? मुकलित। उसे क्या कहते हो? मुकलित, मैंने कली अभी मुकलित हुई, अभी खिली नहीं, खिली तो पुष्प हो गई, तो मुकलित। तो वैसे ही भगवान की जब समाधि टूटी और तुड़वाई जब, तो क्या हुआ भगवान शिव का? कहने लगे एकम योग समाधिना मुकलितम, उस योग समाधि से भगवान का एक नेत्र मुकलित हुआ। और मुकलित हुआ का मतलब मैंने भी पूरा खुला नहीं। आप भी जब नींद में होते हो और कोई जगा देता है तो प्रारंभ में जो है पूरे नेत्र खुलते, क्योंकि वह नींद की खुमारी चढ़ी रहती। ऐसे ही भगवान जिस समाधि में थे और जिस अवस्था में थे उस अवस्था की खुमारी उनमें थी, उनका नेत्र खुला तो लेकिन पूरा, और फिर कहने लगे नेत्रम द्वितीयम पुनः, दूसरा नेत्र खुला, तीन नेत्रों की कल्पना की गई उनकी है, त्र्यंबकम यजाम, इसलिए उन्हें त्र्यंबक भी कहा गया। अब जो है दूसरा नेत्र खुला तो कहने लगे श्रृंगार भारा लशक, दूसरा नेत्र खुला तो भगवान की दृष्टि कहीं अन्यत्र नहीं गई, देवताओं पर नहीं गई, अन्यत्र नहीं गई, कहां गई तो पार्वत्या, पार्वती के श्रृंगार को देखने लगे। क्या मतलब, पार्वती क्या प्रकृति, एक नेत्र खुला होता है तो कहने लगे भगवान जो है अपनी उस समाधि की खुमारी में ही, अभी जो है इधर उधर कहीं संकल्प विकल्प नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरा नेत्र खुला तो अन्यत्र नहीं देख रहे, उस प्रकृति के श्रृंगार को देख रहे, प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे। और प्रकृति क्या है, प्रकृति भी कोई दूसरी चीज नहीं, वैसे तो एक लक्षण कर दिया गया श्रेष्ठा कृतिर या इति प्रकृति, जो श्रेष्ठ कृति है उसी का नाम क्या है प्रकृति, और किसकी है तो वो बोबरी समास कर देते तो माने जिसकी है, तो उसी परमात्मा की है श्रेष्ठ कृति। और वो जब नेत्र उसने दूसरा खोला तो उस प्रकृति के श्रृंगार को देख रहा, उसके सौंदर्य को देख रहा, लेकिन अन्यत्र भी कहीं दृष्टि उसकी गई। और फिर कहने लगे, फिर क्या हुआ आगे दो नेत्र खुलने के बाद, तो अन्य दूर निरस्त चाप मदनस्त क्रोधा नले दीपिते संवोर भिन्न रसम समान समय नेत्रत्रय पात व। ये संकेत, इसका मतलब क्या, अकार उकार मकार आदि को हम लेते, ओम को सबसे श्रेष्ठ माना गया, तो यहां पर भगवान के नेत्रों को भी अकार उकार मकार भी कहा, त्र्यंबक उनको कहा, और वहां संकेत किया गया हृस्व दहत पापानी। जब ओम का हम केवल हृस्व रूप से उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पापों को नष्ट कर देता। दीर्घ प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, और दीर्घ प्रणव का उच्चारण करते हैं तो क्या होता, हमारे मनोराज्य को ही वो विजय कर लेता, माने हमारा मन अन्यत्र नहीं जाता, प्रकृति के श्रृंगार को दिखता। ये भगवान शंकर से संकेत किया। और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो जब ये स्थिति हो गई, ये सब साधन संपन्न स्थिति हो, ऐसी स्थिति होने पर ही फिर क्या है, तीसरा जो ज्ञान नेत्र करके कहते, उस ज्ञान में क्या होता, कहा कामना ही भस्म, वहां कोई कामना शेष नहीं है। तो क्रोधा नले दीपिते, जैसे ही तीसरा नेत्र खुआ तो वो जो काम जो था पहले ही उसने चाप आदि फेंक दिए और भागने लगा, देवता कहने लगे संगर संगर महाराज ठहरो ठहरो, लेकिन तब तक तो वो जल गया। अर्थात ऐसे आश्रय तत्व में सदा रहने वाले भगवान शिव हैं, और ऐसे आश्रय तत्व का ही जब हमें बोध होता है और संसार प्रकृति का कार्य का बोध होता है, तब हमारे अंदर ये निश्चय होने पर और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं को लेकर के, जैसे सुषुप्ति अवस्था में वहां कुछ भी नहीं रहता है लेकिन अविद्या आदि है, लेकिन वो एक अवस्था विशेष है, और वहां पर जो स्थिति होती वो हमें अनुभव कराती है कि इससे आगे जो स्थिति है वो मात्र क्या है, वो अखंड है, और ये खंड से, तो उस अखंड का ही निश्चय हम जब खंडों में कर लेते हैं, और निश्चय जब खंडों में हो जाता है तो खंडों में रहते हुए भी वह खंड हमें दुखित, वह खंड हमें नूतनता प्रदान करते रहते हैं, और उन खंडों में भी फिर विद्या विनय ब्राह्मणे गव्यस्तिनी इत्यादि की स्थिति बनी रहती है। तो यहां संकेत ये है, हमारे भारतवर्ष की ये संस्कृति है, जैसे कार्तिक के बाद आप जो है क्या मानते हो, नववर्ष मानते हो कार्तिक को लेकर, उधर जो है चैत्र मास को लेकर के नवरत्र मानते हो, तो दोनों की जगह पर जब ऐसी चेतना आ जाती जो फल्गुता है व्यर्थता है उसको जब हमने जला दिया, फाल्गुन शब्द का तात्पर्य ये, और कार्तिक का मतलब है कृंति कतरनी अर्थ में धातु, अर्थात जहां पर जो अशुभ है, अर्थात जो दुखद है, जो हमारे रोग कारक है, जो वर्षा होती तो दुनिया के कीकरण पैदा हो जाती, लेकिन अब सफाई आदि करके दीपक आदि के माध्यम से जिनको हमने जला करके नष्ट कर दिया, तब क्या होगा, उनको जब काट दिया, उनका खत्म कर दिया, तब हमारे जीवन में वो आश्रय और सुंदर मार्ग आता है और उस मार्ग में को लेकर के जब हम चलते हैं तभी हमारे जीवन में नूतनता, तभी हमारा खंड हमारा वर्ष नवीन होता है। इसलिए यहां से उसको संकेत किया तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जो विद्या आदि का कार्य है उस सारे के सारे कार्य का आश्रय क्या है और जो विद्या का कार्य है उसका भी आश्रय क्या है। उस आश्रय का जब निश्चय हो जाता और उसका निश्चय हो करके और हम फिर व्यवहार करते हैं तो चाहे जो व्यवहार हो लेकिन वहां पर भी हम देखते हुए नहीं देखते और न देखते हुए भी देखते। और ये स्थिति जब हो जाती है उसका मतलब क्या, सर्वत्र एक आत्म तत्व को हम देखते हैं और जब ऐसा देख करके हम व्यवहार करते हैं खंड से करते हैं तो उस खंड में भी नवीनता बनी रहती है। ऐसा तात्पर्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।